डॉक्टर डेनियल जे ट्रेयर, नीतिवचन 17। नीतिवचन 10-29 बुराइयां। 2024 डेनियल ट्रेयर और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेनियल जे टेरियर ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र संख्या 3 है। नीतिवचन 10-29 कैपिटल वाइस। ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पढ़ने पर यह हमारा तीसरा व्याख्यान है। अब नीतिवचन 10-29 को 7 प्रमुख बुराइयों के संदर्भ में संबोधित किया जा रहा है। सद्गुणों और अवगुणों के बारे में पारंपरिक ईसाई शिक्षा हमें नीतिवचन के एकत्रित नैतिक ज्ञान को संश्लेषित करने और लागू करने में मदद कर सकती है, जबकि व्यक्तिगत कहावतें यादगार होती हैं और कभी कभी कई कहावतों को विषयगत समूहों में एक साथ रखा जाता है। इन कहावतों का अनुप्रयोग बहुत छिटपुट लग सकता है क्योंकि हम उनका सामना विशेष रूप से कभी कभी लगभग अलग अलग संदर्भों में करते हैं। स्थितिविशिष्ट होना उनकी प्रतिभा का हिस्सा है, लेकिन यह प्रतिभा उनकी बड़े पैमाने की सुसंगतता को छिपा सकती है। सृजित दुनिया के संदर्भ में वाचा की वफादारी और सांप्रदायिक उत्कर्ष के बंधन को बनाए रखते हुए प्रभु से डरने का क्या मतलब है, इस बारे में उनकी साझा दृष्टि। आदर्श रूप से कार्डिनल और धार्मिक गुणों की परंपरा एक ऐसी भाषा प्रदान करती है जिसके साथ नीतिवचन की सकारात्मक नैतिक दृष्टि को संप्रेषित किया जा सकता है। हालांकि मनुष्य अब स्वार्थी मूर्खता, ईश्वर के प्रति निष्ठा के बजाय मूर्ति पूजा और दान के बजाय अन्याय से भरा हुआ है। सद्गुणों के विपरीत दुर्गुणों को अदालत में अपना दिन चाहिए। ईसाई हलकों में महत्वपूर्ण बुराइयों को भ्रामक रूप से 7 घातक पापों के रूप में जाना जाने लगा है। फिल्में, वृत्तचित्र और यहां तक कि किताबें भी अब इस प्रतिमान का पता लगाती हैं, कभी कभी पापों का जश्न भी मनाती हैं। लेकिन पापों पर विशिष्ट ध्यान, जिसे लोग विशेष कृत्यों से जोड़ते हैं, पहले से ही उस चीज को विकृत कर देता है जिसे यह प्रतिमान संबोधित करना चाहता है। पूंजीगत बुराइयों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पापपूर्ण स्वभाव हैं जिनसे अन्य पाप उगते हैं, जैसे कि जड़ से लेकर फूल और पेड़ तक। इस प्रकार पूंजीगत बुराइयां किसी के आराम के लिए, न कि केवल व्यवहारिक परिणामों के लिए, हृदय के साथ बहुत निकटता से व्यवहार करती हैं। इस प्रकार वे कानूनवाद या निराशा के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए एक नुस्खा पेश करते हैं जो ईश्वर के साथ एक अनुबंधित रिश्ते के साथ जुड़ा होता है, अंततः आत्मा द्वारा मसीह में नया जीवन। बुतपरस्त कम से कम कुछ बुराइयों से जुड़ी समस्याओं को पहचान सकते हैं, लेकिन अव्यवस्थित इच्छा उनकी जड़ है। इसलिए जब तक किसी व्यक्ति की इच्छाएं ईश्वर के प्रेम से ठीक नहीं हो जाती, तब तक इन बुराइयों पर विजय पाने का कोई भी प्रयास मूल रूप से टाइटैनिक पर डेक कुर्सियों के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि अस्थायी रूप से वासना या लोलुपता या इस तरह की चीजों पर विजय केवल अहंकार की दास्ता को बढ़ा सकती है। कम से कम व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर तो यह सच है, लेकिन फिर जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा, लोगों को कुछ बुराइयों पर काबू पाने के लिए कम से कम आंशिक आत्मनियंत्रण और कुछ गुणों के आंशिक एहसास का एहसास कराने के लिए कुछ सामाजिक प्रोत्साहन और मूल्य भी है। अब इन बुराइयों की विभिन्न ईसाई सूचियां हैं। उनकी संख्या हमेशा 7 नहीं होती। सरलता और मितव्ययता के लिए यहाँ मैं 7 का इलाज करने जा रहा हूँ और वैंगलोरी को रखूंगा, जो आमतौर पर इन सूचियों में आता है। मैं इसे गर्व के शीर्षक के तहत रखने जा रहा हूँ। आमतौर पर घमंड को इन पूंजीगत बुराइयों की मुख्य जड़ माना जाता है। अन्य सभी के बीच कोई व्यवस्थित संबंध नहीं है। ऐसा कोई सटीक क्रम नहीं है जिसने हमेशा जीत हासिल की हो, लेकिन आमतौर पर घमंड को किसी न किसी तरह जड़ में होने के रूप में देखा जाता है। यहाँ हम दांते के आदेश के विपरीत आगे बढ़ने जा रहे हैं। उनके नरक के घेरे और पुर्गाटोरियल पर्वत की छतों का अर्थ है कि संबंधित बुराइयां ईश्वर के भय से दूर और दूर होती जा रही हैं, जबकि पवित्रता की ओर बढ़ना गर्व का सामना करने से शुरू होना चाहिए। तो फिर जिस समग्र क्रम में हम उनके साथ व्यवहार करने जा रहे हैं, वह तेजी से सच्चे दान के विपरीत को प्रतिबिंबित कर रहा है, जिसमें अंतिम विपरीत के रूप में गर्व है और फिर ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, लोरुपता और वासना है। हम वासना से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि दांते और कई अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि यह सच्ची दान से सबसे दूर है, बल्कि यह है कि यह सच्ची दान से सबसे आसान प्रस्थान है। और इसलिए हम एक तरह से वासना से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वासना से शुरू करना हमें इस तथ्य की ओर संकेत करेगा कि हर कोई अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग विभिन्न प्रेमों के प्रकाश में, विभिन्न इच्छाओं के प्रकाश में करता है, और ये बुराइयां आत्म प्रेम और विश्व प्रेम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जो ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम का खंडन करती हैं, जिसमें सच्चा ज्ञान पाया जाता है और सच्ची धार्मिकता पाई जाती है। तो दांते के लिए तीन बुराइयां, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड, स्वयं के प्यार के माध्यम से दूसरों को विशिष्ट रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। आलस्य एक ऐसा दोष है जो ईश्वर के प्रति दोषपूर्ण प्रेम को दर्शाता है, जिसमें ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम में पूरे दिल की कमी होती है। और फिर तीन अन्य बुराइयां, वासना, लोलुपता और लालच, ईश्वर के सापेक्ष प्राणियों की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक प्रेम को शामिल करती हैं। तो एक अर्थ में वह एक प्रकार की शिक्षा शास्त्र का सुझाव दे रहे हैं, जिसमें हम प्राणियों की वस्तुओं के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम, स्वयं ईश्वर से अधिक प्रेम करने के द्वारा ईश्वर की ओर अपनी वापसी शुरू करते हैं, और फिर हम स्वयं के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में सक्षम होते हैं। निःसंदेह बुराइयों की सामग्री और क्रम दोनों में ईसाई परंपरा की इन सूचियों का लचीलापन यह स्वीकार करता है कि हमारी अव्यवस्थित इच्छाओं के बीच कई अंतर संबंध हैं। वर्तमान सूची घातक पाप से शुरू होती है, जो समकालीन पश्चिमी संस्कृति में सबसे अधिक मजाक का विषय है, वासना। कई धर्मशास्त्रियों द्वारा ईसाई परंपरा को सबसे अच्छे रूप में शरीर स्वीकार करने वाले विवेक और सबसे बुरे रूप में दमन के स्रोत के रूप में माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब यौन नैतिकता की बात आती है तो क्लासिक ईसाई विचारकों के बीच कुछ अस्वास्थ्यकर तत्व मौजूद हैं। फिर भी केवल शरीर का तिरस्कार करने से दूर, उन्होंने वास्तव में कई समकालीनों की तुलना में मानव व्यक्ति में इसके अभिन्न प्रभाव को अधिक तीव्रता से पहचाना। जैसा कि रेबेका डी यंग कहती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी सराहना के लिए सटीक रूप से आवश्यक है कि हम उन्हें अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करने की कोशिश न करें, जो हमारी वासना को इतना प्रेरित करती है कि हम अपनी शर्तों पर अपने लिए अपनी खुशी बनाने की कोशिश करते हैं। वासना दूसरे शब्दों में अहंकार में जड़ से पनपती है। वासना के प्रति नीतिवचनों का अधिकांश विरोध पहले से ही अध्याय 1-9 में सामने आया है। यदि वे पाठ न केवल शारीरिक बल्कि कुछ हद तक आध्यात्मिक व्यभिचार को भी दर्शाते हैं तो यह उचित है, क्योंकि बाद वाला आध्यात्मिक व्यभिचार वाचा तोड़ने वाले आत्मप्रेम की गतिशीलता को शामिल करता है। नीतिवचन अध्याय 9 के बाद इन खतरों की चेतावनी देना पूरी तरह से बंद नहीं करता है। उदाहरण के लिए 22:14 में एक ढीली औरत का मुंह एक गहरा गड्ढा है, जिस पर प्रभु क्रोधित होता है वह उसमें गिरता है। ध्यान दें कि इनमें से कुछ कहावतों में व्यभिचारिणी आम तौर पर मूर्खता और आध्यात्मिक व्यभिचार के लिए दैवीय दंड का साधन बन जाती है। इसलिए आनंद से प्यार करना, और वैसे वासना सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह अधिक व्यापक रूप से आनंद के बारे में है। नीतिवचन के अनुसार आनंद से प्यार करना गरीबी का कारण बन सकता है। जो सुख से प्रेम करता है वह अभाव से पीड़ित होगा। जो कोई शराब और तेल से प्यार करता है वह अमीर नहीं होगा। 21:17 अपनी इच्छा के वशीभूत लोग सारा दिन बुराई करने की योजना बनाने में बिता देते हैं। 21:25 और 26:24, 8:09। हालांकि कुछ लोग ऐसी बेलगाम इच्छा का प्रतिकार कर सकते हैं। धर्मी की इच्छा केवल भलाई में समाप्त होती है, दुष्टों की आशा क्रोध में समाप्त होती है। 11:23। इसलिए वासना पर विजय इच्छा के बिना प्राणी बनने में नहीं है, यह एक असंभव कार्य है। इसके विपरीत जीत वस्तु, प्रकृति और हमारी इच्छाओं की सीमा को पुनः व्यवस्थित करने में निहित है, ताकि धार्मिकता दुष्ट स्वार्थी षड्यंत्रों का स्थान ले ले। विशेष रूप से सेक्स के संबंध में एक स्वस्थ विवाह ऐसी पुनर्व्यवस्थित इच्छा का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, जिसके लिए नीतिवचन कहते हैं। फिर भी लोगों को भोला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई अच्छे इरादे वाले संयम अभियान वासना की समस्या को हल करने के लिए वैवाहिक सेक्स के बारे में प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं है, यह उपचार के अधिक व्यापक रूप का हिस्सा है। इसके अलावा शालोम के अन्य तत्व, जिस पर नीतिवचन शुद्धता, एक अच्छा नाम, पर्याप्त संसाधन, सुरक्षा, झगड़े के बजाय सामाजिक सद्भाव आदि की अपील को आधार बनाता है, शालोम के ये अन्य तत्व भी अव्यवस्थित हो सकते हैं, जैसा कि कई अन्य बुराइयां प्रदर्शित करती हैं, यदि शालोम की हमारी खोज अंतः प्रभु के भय से उन्मुख नहीं है। ईसाई परंपरा मानती है कि सद्गुणों की तरह बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं। पिताओं का मानना था कि मेज का सुख विशेष रूप से शारीरिक सुख की ओर ले जाता है। फिर यह ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा और आध्यात्मिक आलस्य से कुछ कदम आगे है, जो आत्मा को नष्ट कर देता है। क्लेनबर्ग कहते हैं, एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो लोलुपता और वासना, आनंद का प्यार, विशेष रूप से यौन सुख और भोजन और पेय का प्यार जुड़े हुए हैं। लेकिन लोलुपता उतना सरल नहीं है जितना खाना या बहुत अधिक आनंद लेना। रेबेका डी यंग ने यहाँ दाव पर लगी विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए संक्षिप्त नाम फ्रेश का सुझाव दिया है। तेजी से, भूख से, अत्यधिक विलासिता से, जल्दी जल्दी खाना। दूसरे शब्दों में लोलुपता भोजन के संबंध में आत्मव्यस्तता का प्रतीक है। इसका उपयोग भगवान के अलावा आत्मा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। जबकि लोलुपता अत्यधिक भोजन, आरामदेह भोजन, फास्ट फूड, मीठा खाने या इसी तरह का मामला हो सकता है, वैकल्पिक रूप से इसमें गलत तपस्या या वजन नियंत्रण में व्यस्तता शामिल हो सकती है। नीतिवचन दुष्टों को भोजन की लालसा से जोड़ते हैं। यहोवा धर्मियों को भूखा नहीं रहने देता, परंतु दुष्टों की लालसा को विफल कर देता है। 10:03। 20:13 के अनुसार परमेश्वर काम करने वाले धर्मी लोगों की व्यवस्था करता है। नींद से प्यार मत करो, नहीं तो तुम गरीबी में आ जाओगे। अपनी आंखें खोलो और तुम्हें भरपूर रोटी मिलेगी। भगवान हमारे पेट की वास्तविक जरूरतों को पूरा करते हैं। फिर भी पूर्ण संतुष्टि अन्यत्र मिलती है। 18:20 मुंह के फल से मनुष्य का पेट तृप्त होता है। होठों की उपज संतुष्टि लाती है। दूसरे शब्दों में यहाँ मुंह के संबंध में यह दिलचस्प समानता धार्मिकता और ज्ञान में पूर्ण संतुष्टि का पता लगाती है। उदाहरण के लिए समय पर भाषण में हमारे मुंह से क्या निकलता है बजाय इसके कि अंदर क्या जाता है। इस बीच भोजन से अधिक सांसारिक संतुष्टि के लिए वास्तव में संयम की आवश्यकता होती है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। यदि तुम्हें शहद मिल गया है तो केवल अपने लिए पर्याप्त खाओ, अन्यथा बहुत अधिक होने पर तुम उसे उल्टी कर दोगे। 25:16। अधिक शहद खाना या सम्मान के ऊपर सम्मान की तलाश करना अच्छा नहीं है। 25:27। तृप्त भूख शहद को ठुकरा देती है, परंतु तीव्र भूख के लिए कड़वा भी मीठा होता है। 27:7। हम में से कितने लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि पार्टियों में या खाने की मेज पर भोजन की अतिरिक्त वस्तुएं ले लेते हैं और इस विचित्र जागरूकता के साथ कि हम एक निश्चित समय पर वास्तविक आनंद के लिए उन्हें खाने की तुलना में दूसरों के स्थान पर उन्हें अपने पास रखने की अधिक इच्छा रखते हैं। नीतिवचन शराब से जुड़ी मूर्खता का भी सामना करते हैं। दाखमधु ठट्ठा करने वाला मादक पेय झगड़ालू है और जो कोई इसके द्वारा भटक जाता है वह बुद्धिमान नहीं है। 20:1। जो कोई सुख से प्रेम करता है वह अभाव से पीड़ित होगा। जो कोई दाखमधु और तेल से प्रेम करता है वह धनवान नहीं होगा। 21:17। शराब पीने वालों या मांस के पेटू खाने वालों के बीच में न रहो, क्योंकि शराबी और पेटू गरीबी में आ जाएंगे और तंद्रा उन्हें चिथड़ों से ढक देगी। 23:20। वास्तव में लोलुपता आसानी से आलस्य जैसे अन्य बुराइयों को बढ़ावा देती है और नीतिवचन अध्याय 23 में शराब के खतरों का विस्तार से वर्णन करता है। लोलुपता के सामाजिक निहितार्थ हैं। जो व्यवस्था का पालन करते हैं वे बुद्धिमान बालक हैं, परंतु पेटू लोगों के साथी अपने माता पिता को लज्जित करते हैं। 28:7। अब जबकि प्रतिष्ठा के प्रति चिंता कई खतरे प्रस्तुत करती है, ये जल्द ही सामने आते हैं जब ईर्ष्या, अहंकार और घमंड की बात आती है। नीति वचन में हमारे आत्मनियंत्रण के बारे में दूसरों की धारणाओं के बारे में सामाजिक जागरूकता का एक स्वस्थ रूप रहता है। अत्यधिक ईमानदारी और कटे हुए विवेक के विरुद्ध जब खाने और पीने की बात आती है तो नीतिवचन का संदेश 1 कुरिन्थियों 10:31 के अनुरूप है। चाहे आप खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ भगवान की महिमा के लिए करें, और भगवान की महिमा को बढ़ावा देने का मतलब हमारे आत्मनियंत्रण की सामाजिक धारणाओं के बारे में कुछ आत्म जागरूकता है। वासना और लोलुपता की तरह लालच या लोभ विकृत इच्छा से संबंधित है। दी यंग बताते हैं कि थॉमस एक विनाश लालच की वस्तु को पैसा या जो कुछ भी पैसे से खरीदा जा सकता है उसे उपयोगी या लाभदायक मानते हैं। दूसरी ओर वासना और लोलुपता में उन चीजों की इच्छा शामिल होती है जहां तक वे हमें शारीरिक सुख देती हैं। तो कम से कम शुरुआत में लालच उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में धन को आनंद से जोड़ता है, लेकिन अंततः और विडंबना यह है कि आत्मवशोषण लालच का यह रूप जो कुछ भी खरीदता है उसकी जगह पैसा ले लेता है। पैसा अपने आप में एक साध्य बन जाता है, न कि किसी अन्य सुख की प्राप्ति का साधन मात्र। प्रतीकात्मक रूप से सूदखोर ऋण देने वाला श्रम के बजाय पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता है, पैसे के साथ दोस्ती या प्यार जैसी हर मूल्यवान चीज की जगह ले लेता है। शिमल के शब्दों में ऐसी त्रासदी की सीमा लालच को एक प्रकार की आध्यात्मिक गिरावट बना देती है। इसकी विशेषता पानी की अतृप्त प्यास है, भले ही शरीर पहले से ही तरल पदार्थ से भरा हो। शारीरिक और आध्यात्मिक जलोदर भी समान है। इसमें पीड़ित जितना अधिक अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है उसकी प्यास उतनी ही अधिक उत्तेजित होती है। लालच तब होता है जब पैसे के प्रति हमारा प्यार आध्यात्मिक जलोदर जैसा हो जाता है। शास्त्रीय समझ में गुण दोनों तरफ बुराई के चरम के बीच में खड़े होते हैं। जिस गुण का लालच विरोध करता है वह उदारता है, स्वतंत्र रूप से और कुशलता से दूसरों और स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करना। लालच के विपरीत प्रतीत होता है दूसरी ओर फिजूल खर्ची, दूसरे शब्दों में धन की बर्बादी उदारता का भी उल्लंघन करती है। दूसरों और स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से और कलात्मक रूप से धन का उपयोग करती है। और पैसा बर्बाद करना फिजूल खर्ची को लोभी लालची के रूप में भी गिना जा सकता है। पैसे के प्रति लगाव की कमी के बावजूद जो सावधानी पूर्वक प्रबंधन की ओर ले जाता है, ऐसी फिजूल खर्ची अभी भी पैसे की उपयोगिता के लिए अत्यधिक इच्छा को दर्शाती है। दूसरी ओर कंजूस व्यक्ति जिसकी खर्च करने की आदतें विवेकपूर्ण लगती हैं, संभवतः लोभी भी हो सकता है। हो सकता है कि वे भविष्य में आनंद की विकृत इच्छा के कारण या पैसे से ही अपने जीवन को मापने के लिए धन जमा कर लें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पैसे का प्यार सभी प्रकार की बुराई की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। जॉन कैसियन यहूदा के मसीह के साथ विश्वासघात को लालच के दृष्टांत के रूप में मानते हैं। उससे सीखते हुए वह लालच हमें एक दूसरे की मानवता को धोखा देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करके हम अपनी मानवता के साथ भी विश्वासघात करते हैं। धर्मग्रंथ में सबसे उल्लेखनीय दृष्टांतों में से एक है अहाब और ईजेबेल द्वारा नाबोत की दाख की बारी हासिल करने के लिए उसकी हत्या करना। कहानी इस कथन के साथ समाप्त होती है। दूसरी ओर फिजूल खर्ची, दूसरे शब्दों में धन की बर्बादी, उदारता का भी उल्लंघन करती है, दूसरों और स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से और कलात्मक रूप से धन का उपयोग करती है। सचमुच अहाब के समान कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के आग्रह पर वह काम करने के लिए अपने आप को बेच दिया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। यह 1 किंग्स 21 है। अन्य बुराइयों की तरह अभिमान लालच का आधार है। हम लालची हैं, स्वयं के लिए किसी प्रकार के माप के रूप में धन चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पतन से पहले अहंकार होता है। लालची व्यक्ति अंतः स्वयं की गरिमा खो देता है क्योंकि वह धन का गुलाम बन जाता है। हमें धन के बारे में कुछ प्रासंगिक सिद्धांत जोड़ने चाहिए जिन्हें विशेष रूप से नीतिवचन में उजागर किया गया है। मेरे पास उनके बारे में विस्तार से जानने का समय नहीं होगा, लेकिन हमें कम से कम उन्हें सामान्य रूप से प्रोफाइल करने की जरूरत है। नंबर 1, गलत तरीके से कमाया गया लाभ वास्तव में लाभहीन है। नीतिवचन विभिन्न तरीकों से लालच का सामना करते हैं। उतावली में बटोरा हुआ धन घटता जाता है, परंतु जो थोड़ा थोड़ा करके बटोरता है वह उसे बढ़ाता है। 13:11। जो लोग अन्यायपूर्ण लाभ के लिए लालची हैं, वे अपने घरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन जो रिश्वत से नफरत करते हैं वे जीवित रहेंगे। 15:27 वगैरह। नीतिवचन के अनुसार धन का आनंद लेना इसे सही तरीके से प्राप्त करने से जुड़ा है, न केवल आपराधिक व्यवहार से बचने के लिए खुद को दोष मुक्त करना, बल्कि इस बात पर विचार करना कि हमारा लाभ हमारे समुदाय को कैसे प्रभावित करता है। दूसरे, धन के अधिग्रहण में कारकों का एक जटिल समूह शामिल होता है। नीतिवचन स्वीकार करते हैं कि भगवान का सर्वोच्च आशीर्वाद धन लाता है। प्रभु का आशीर्वाद धनवान बनाता है और वह इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। 10:22। लेकिन मानवीय कारक भी प्रासंगिक हैं और वे हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं। डरपोक निराश्रित हो जाते हैं, परंतु आक्रामक धन प्राप्त करते हैं। 11:16। मूर्खों के पास ज्ञान खरीदने के लिए कीमत क्यों होनी चाहिए जबकि उनके पास सीखने के लिए दिमाग ही नहीं है। 17:16। इसके अलावा धन की शक्ल भी धोखा देने वाली हो सकती है। कुछ लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं फिर भी उनके पास कुछ नहीं है। अन्य लोग गरीब होने का दिखावा करते हैं फिर भी उनके पास बहुत धन है। 13:07। इसलिए धन का अर्जन जटिल है। धन उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो इसे बहुत कसकर नहीं पकड़ते। 3, अमीरों का धन ही उनका गढ़ होता है। गरीबों की गरीबी उनकी बर्बादी है। 10:15। इसलिए नीतिवचन यथार्थवादी है कि हमें कार्य करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक व्यापक विडंबना की ओर संकेत 18:11 जैसा एक अंश है। धनवानों का धन ही उनका दृढ़ नगर है। उनकी कल्पना में यह एक ऊंची दीवार की तरह है। लेकिन वास्तव में हम अपनी संपत्ति को लेकर कितने सुरक्षित हैं? ठीक है, एक तीमुथियुस 6, मुझे लगता है नीतिवचन के अनुरूप है जब यह कहता है जो लोग वर्तमान युग में अमीर हैं, उन्हें आदेश दें कि वे घमंडी न हो या धन की अनिश्चितता पर अपनी आशा न रखें, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करें जो समृद्ध है, हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ प्रदान करता है, श्लोक 17। और फिर श्लोक 18 और 19 अमीरों के संबंध में जारी रखते हैं कि उन्हें अच्छा करना है, अच्छे कार्यों में समृद्ध होना है, उदार होना है और साझा करने के लिए तैयार रहना है, इस प्रकार अपने लिए भविष्य के लिए एक अच्छी नींव का खजाना जमा करना है, ताकि वे कर सकें उस जीवन को पकड़े जो वास्तव में जीवन है। जो जीवन वास्तव में जीवन है, उसमें भविष्य के लिए ठोस रूप से बंधी हुई आशा और कई बार ईश्वर के अस्थाई प्रावधान का कुछ आनंद शामिल होता है। लेकिन अगर हम अंतिम लाभ चाहते हैं, तो नीतिवचन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि अन्य चीजों से बेहतर क्या है। सो क्रोध के दिन धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है, 11:04। बड़े खजाने और उसके साथ झंझट की अपेक्षा प्रभु का थोड़ा भय मानना उत्तम है। जहाँ प्रेम हो वहाँ सब्जियों का रात्रिभोज मोटे बैल और उसके साथ घृणा की तुलना में बेहतर है, 15:16। हम बेहतर से बेहतर कहावतों के इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण सूचीबद्ध कर सकते हैं। नीतिवचन के दृष्टिकोण से भगवान ने हमें उन संसाधनों के लिए काम करने के लिए बनाया है जो हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं और मध्यम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जिनका दैवीय उपहार के रूप में कृतज्ञता पूर्वक आनंद लिया जाता है। फिर भी धन पापी मनुष्यों को मूर्ति पूजक और दमनकारी खतरों से सामना कराता है। संक्षेप में आगे देखने के लिए नीतिवचन 30:8-9, मुझे न तो गरीबी दो और न ही अमीरी, मुझे वह भोजन खिलाओ जिसकी मुझे आवश्यकता है, अन्यथा मैं तृप्त हो जाऊंगा और तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा और कहूंगा भगवान कौन है। ऐसा न हो कि मैं कंगाल हो जाऊं और चोरी करके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र करूं। यह ज्ञानपूर्ण कहावत यीशु द्वारा प्रतिध्वनित होती है जब वह हमें प्रार्थना करना सिखाते हुए कहते हैं, इस दिन हमें हमारी दैनिक रोटी दो। चौथा, आलस्य की बुराई को नीतिवचन में बहुस्तरीय उपचार मिलता है। सबसे पहले दैवीय प्रावधान आमतौर पर कड़ी मेहनत के माध्यम से मध्यस्थ होता है, जिसमें गरीबी के पीछे आलस्य एक महत्वपूर्ण लेकिन किसी भी तरह से विशेष कारक नहीं है। 10:04 ढीले हाथ से निर्धनता होती है, परंतु परिश्रमी हाथ से धनवान होता है। जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं उन्हें तो बहुत भोजन मिलेगा, परंतु जो निकम्मे कामों में लगे रहते हैं वे निर्बुद्धि होते हैं। 12:07 और मैं ढेर सारे अन्य अनुच्छेदों की सूची बना सकता हूँ। इसलिए नीतिवचन के अनुसार आलस्य गरीबी का कारण हो सकता है और आलस्य शर्मनाक है। 10:05 जो बच्चा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो बच्चा कटनी के समय में सोता है वह लज्जित होता है। 10:26 जैसे दांतों में सिरका और आंखों में धुआं, वैसे ही आलसी अपने मालिकों के लिए होते हैं। विडंबना यह है कि आलसी लोगों को अक्सर अपने आसपास की सामाजिक सुस्ती का एहसास नहीं होता है, लेकिन वे वास्तव में घमंड का शिकार हो जाते हैं। 20:6-16 आलसी व्यक्ति विवेक से उत्तर देने वाले 7 लोगों से अधिक बुद्धिमान होता है। तो आलस्य शर्मनाक है, लेकिन नीतिवचन का आलस्य के प्रति टकराव आलस्य की निंदा करने से कहीं आगे जाता है और नीतिवचन सरलता से सभी गरीबी को आलस्य के साथ नहीं जोड़ता है। उदाहरण के लिए 13:23 पर विचार करें, गरीबों के खेत से बहुत अधिक भोजन पैदा हो सकता है, लेकिन वह अन्याय के कारण नष्ट हो जाता है। इसके अलावा ईसाई परंपरा आलस्य की तुलना में आलस्य को अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करती है। आलस्य के पाप के दो घटक हैं, एकेडिया जिसका अर्थ है देखभाल की कमी, ईश्वर और मनुष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लक्ष्यहीन उदासीनता, जो कि हम आलस्य के रूप में सोचते हैं के करीब है, लेकिन ट्रिस्टिटिया भी है जिसका अर्थ है दुहक और दुहक। अपने अंतिम चरण में आलस्य मोक्ष की संभावना पर, ईश्वर की कृपा से रूपांतरित होने की संभावना पर निराशा बन जाता है, ताकि हम सार्थक रूप से कार्य कर सकें, बढ़ सकें और दुनिया में बदलाव ला सकें। निश्चित रूप से नीतिवचन में काम करने से इनकार करने को प्रकृति के बुनियादी स्तर पर प्राकृतिक या धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से समस्याग्रस्त माना जा सकता है। हालांकि छुटकारे की कृपा के संदर्भ में एक बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है, काम सहित ईश्वरीय अनुशासन से आशा के साथ गुजरने से इनकार, जो ज्ञान को बढ़ावा देता है। अक्सर नीतिवचन आलस को अव्यवस्थित और असंतुष्ट इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं, और यह जुड़ाव आलस के प्रति व्यापक ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। लेकिन हमें गरीब लोगों की निंदा करने या कामचोरी का जश्न मनाने में नीतिवचन की शिक्षा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें व्यर्थ के कामों और आत्मतल्लीनता से दूर ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने वाले आशापूर्ण कार्य की ओर इसकी गहरी पुकार को ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले दोषों की तरह अगला प्रमुख दोष क्रोध संयम के विरुद्ध पाप है। जुनून वास्तव में समस्या नहीं है, केवल उसमें व्यस्तता है, जैसे कि आलस्य या उचित वस्तुओं की अनुचित खोज जैसे वासना और लोलुपता, या अनुचित वस्तुओं की खोज जैसे लालच, जब पैसा अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है। इसी तरह यहाँ क्रोध न्याय के जुनून से उत्पन्न होता है, जो कुछ कथित अन्याय से सक्रिय होता है। अक्सर अन्याय काफी वास्तविक होता है, लेकिन क्रोध में असंगत प्रतिक्रिया शामिल होती है। अब धार्मिक बहस इस बात पर जारी है कि क्या वास्तविक अन्याय के मामलों में कुछ गुस्सा एक बुराई है। इफिसियों 4:26 और 27 किसी प्रकार के धार्मिक क्रोध के मामले का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। अपने क्रोध का सूर्य अस्त न होने दो और शैतान के लिए स्थान न बना। लेकिन वे चर्च पिता जिन्होंने सोचा कि कोई भी गुस्सा एक क्षण से अधिक समय तक नहीं रह सकता, वे अभिव्यक्ति के हमारे आधुनिक उत्सव और हमारी खतरनाक प्रतिक्रियाओं को दबाने की प्रवृत्ति को मददगार ढंग से चुनौती दे सकते हैं। कम से कम व्यावहारिक स्तर पर हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई उचित गुस्सा कब और कैसे आएगा। दरअसल डी यंग के शब्दों में बाइबल की सहमति के एक त्वरित स्कैन से एक दर्जन अंश मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश नीतिवचन से हैं, जो क्रोध के बारे में सलाह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी में भी हमारे क्रोध की वस्तु के बारे में एक भी शब्द का उल्लेख नहीं है। वह कहती हैं, क्रोध की उचित अभिव्यक्ति पर अनुच्छेदों को सलाह में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे शांत करें। इस विषय पर नीतिवचन की हमारी जांच शुरू करने के लिए सबसे पहले हिंसा का इलाज करने वाले अंश हैं, जो अक्सर क्रोध से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी धन प्राप्त करने का एक साधन 11:16 हिंसा अपने आप में लगभग एक वांछित अंत बन सकती है, उदाहरण के लिए अध्याय 13:2 में। दुष्ट लोग धर्मी के प्रति घृणा के कारण हिंसक हो सकते हैं, 29:10। अक्सर दुष्ट अपने पड़ोसियों को लुभाते हैं, 16:29 उनके शब्दों के रूपक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घात से, 12:6। हमें दो बार बताया गया है कि दुष्टों के मुंह में हिंसा छिपी होती है, 10:06 और 11। हालांकि अंत में दुष्टों की हिंसा उन्हें नष्ट कर देगी, क्योंकि वे उचित कार्य करने से इनकार करते हैं, 21:07। दूसरा, हिंसा शारीरिक हो भी सकती है और नहीं भी, संघर्ष के संदर्भ में लाक्षणिक रूप से संचालित होती है, 10:12 कहता है कि नफरत झगड़े को जन्म देती है, 15:1 कहता है कि कठोर शब्द क्रोध भड़काता है। इसलिए कुछ ग्रंथ क्रोध को भड़काने वालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं, घृणा, कठोर शब्द और इसी तरह की अन्य चीजें। लेकिन ये भड़काने वाले बुद्धिमान लोगों को चित्रित नहीं करते हैं, और कई ग्रंथ उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मूर्खता से चित्रित होते हैं, अक्सर आग शुरू करने की छवि का उपयोग करते हैं। गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति 15:18, विकृत व्यक्ति 16:28, उपहास करने वाला 22:10 और 29:18, गपशप 16:28 और 26:20 और 21, लालची और भक्तिहीन भी। यह समझना गंभीर होना चाहिए कि क्रोध करने से व्यक्ति शीघ्र ही उन लोगों में शामिल हो जाता है जो विशिष्ट रूप से मूर्ख होते हैं, 20:3। इसलिए झगड़े की शुरुआत पानी बहाने के समान है, इसलिए झगड़ा शुरू होने से पहले ही रुक जाएं, 17:14। आग और पानी दोनों चीजें जिन पर नियंत्रण खोना आसान है। एक अन्य छवि में 26:17, जैसे कोई व्यक्ति जो गुजरते कुत्ते को कान के पास ले जाता है, वह है जो दूसरे के झगड़े में हस्तक्षेप करता है। इस विषय से संबंधित कई अन्य अनुच्छेदों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप संघर्ष से कैसे बचें। खैर, प्रेम सभी अपराधों को ढक देता है, 10:12। नरम उत्तर क्रोध को दूर कर देता है, 15:01। जो क्रोध करने में धीमे हैं, वे विवाद को शांत करते हैं, 15:18। और 28:25 में झगड़े भड़काने वाले एक लालची व्यक्ति के विपरीत जो कोई प्रभु पर भरोसा करेगा वह समृद्ध होगा। अब पहले से ही झगड़े भड़काने वालों में से बदनामी की पहचान की जा चुकी है, लेकिन हमें इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत है। 24:28, 29। बिना कारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और अपने होठों से धोखा न देना। यह मत कहो, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही मैं दूसरों के साथ भी करूंगा। उन्होंने जो किया है उसका बदला मैं उन्हें चुकाऊंगा। यद्यपि पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही एक प्रभावी हथियार की तरह लगती है, जैसा कि 25:18 स्वीकार करता है, वास्तव में उड़ने में गौरैया की तरह, उड़ने में निगल की तरह, एक अवांछित अभिशाप कहीं नहीं जाता है, 26:2। वास्तव में चुगली करने वाली जीभ निश्चित रूप से क्रोध पैदा करती है, जैसे उत्तरी हवा बारिश लाती है, 25:23। अंत में झूठ बोलने से बैर छिप जाता है, और जो कोई निंदा बोलता है वह मूर्ख है, 10:18। चौथा, निंदा और प्रतिशोध की मूर्खताएं जुड़ती हैं। चूंकि याकूब 4:11 और 12 के अनुसार जो व्यक्ति निंदा करता है वह कानून देने वाले और दूसरों पर न्याय करने वाले के रूप में परमेश्वर का पद हथिया लेता है, और ईश्वर सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी को भी प्रतिशोध नहीं सौंपता, तब भी जब लोगों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ हो। मेरा प्रतिशोध। व्यवस्था विवरण 32 और रोमियो 12 में यहोवा कहता है, मैं बदला दूंगा। इसलिए यह मत कहो, मैं बुराई का बदला दूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, वह तुम्हारी सहायता करेगा, नीतिवचन 20:22। जैसा कि पौलुस रोमियो 12 में आगे कहता है, यदि तुम्हारे शत्रु भूखे हैं तो उन्हें खाने के लिए रोटी दो, और यदि वे प्यासे हैं तो उन्हें पीने के लिए पानी दो, क्योंकि तुम उनके सिर पर आग के कोयले ढेर करोगे और प्रभु उन्हें प्रतिफल देगा। आप नीतिवचन 25 से चाहे उनकी स्पष्ट शर्म पश्चाताप की ओर ले जाए या नहीं, हमारे दुश्मनों की जरूरतों को पूरा करना दान को बढ़ावा देता है। हमने जो गलतियां की हैं उनके सामने क्रोध को समझा जा सकता है, साथ ही उस वास्तविक भेद्यता को भी देखा जा सकता है जिसे अन्याय सहने वाले लोग महसूस करते हैं। लेकिन क्रोध, यहाँ तक कि निराशापूर्ण क्रोध, न्याय के चरित्र को गलत समझते हुए गर्व से भगवान के विशेषाधिकारों को हड़प लेता है, क्योंकि ईश्वर के न्याय में सुधार के अवसर के साथ साथ दया भी शामिल हो सकती है, कभी कभी इसमें हमारी ओर से काफी धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। पांचवा, नीतिवचन में क्रोध के प्रति सबसे व्यापक विरोध क्रोध को माना जाता है। मूर्ख तुरंत अपना क्रोध प्रकट करते हैं, परंतु बुद्धिमान अपमान को अनदेखा करते हैं। 12:16। जल्दबाजी में बोलने से तलवार का वार होता है, परंतु बुद्धिमान की वाणी चंगा होती है। 12:18। जो क्रोधी होता है वह मूर्खता करता है और षड्यंत्र रचने वाले से घृणा की जाती है। 14:17। जो क्रोध करने में धीमा होता है वह बड़ी समझ रखता है, परंतु जो उतावली करता है वह मूर्खता को बढ़ाता है। 14:29। विभिन्न कोणों से नीतिवचन क्रोध को अरुचिकर चीजों से जोड़ते हैं। मूर्खता, घाव देना, षड्यंत्र रचना, बार बार अपराध करना इत्यादि। हालांकि हमारे पास नए नियम के प्रासंगिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए समय और स्थान नहीं है, जो बाइबल धर्मशास्त्र में नीतिवचन के समग्र योगदान को पूरी तरह से विकसित करेगा, यहाँ स्पष्ट रूप से जेम्स की पुस्तक का उल्लेख करना उचित है, विशेष रूप से अध्याय 1:19-20 और अध्याय 3:5-6। साथ ही शरीर के कार्यों के बीच संघर्ष, क्रोध, झगड़े, मतभेद और गुटों का उल्लेख है, जो गलातियों 5 में आत्मा के फल का विरोध करते हैं। क्रोध न केवल असंयम को दर्शाता है, बल्कि यह अहंकार से भी उत्पन्न होता है। यह विपरीत है न केवल दान के बल्कि प्रभु के भय के भी, क्योंकि हम न्याय के संदर्भ में ईश्वर के विशेषाधिकार वाली किसी चीज को अपने हाथों में ले रहे हैं। ईश्वर से डरने और उस पर भरोसा करने के बजाय, ताकि हम दूसरों के साथ धैर्य रख सकें, हम अपने लिए या दूसरों से प्यार करने के नुकसान से डरते हैं और हम भड़क उठते हैं। फिर भी अक्सर दोहराए जाने वाले पुराने नियम के अनुसार, जिस ईश्वर से हम कहते हैं कि हम डरते हैं, वह दयालु और कृपालु है, क्रोध करने में धीमा है और दृढ़ प्रेम से भरपूर है। हम उसके जैसा बनना चाहते हैं और नीतिवचन इसे बढ़ावा देते हैं। नीतिवचन, जिसे संघर्ष कहते हैं, उसमें किसी अन्य पूंजी के अवगुण, ईर्ष्या, न्याय की विकृत भावना या किसी अन्य पार्टी के खिलाफ सिर्फ इसलिए शामिल हो सकते हैं कि वे कौन हैं या उनके पास क्या है। हालांकि ईर्ष्या का अर्थ केवल उस चीज का लालच करना नहीं है जो किसी और के पास है या जो स्वयं का हो सकता है या होना चाहिए, उस पर ईर्ष्या महसूस करना नहीं है। ईर्ष्या का अर्थ है किसी और के पास जो कुछ है उसे पाने की इच्छा करना और यह चाहना कि वह उसके पास नहीं है। ईर्ष्या दूसरे शब्दों में पड़ोसी को हमले की वस्तु के रूप में रखती है, न कि केवल मुख्य रूप से इच्छा की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती है। दुर्भाग्यवश ईर्ष्या लगभग शुरू से ही बाइबल की कहानी का अभिन्न अंग रही है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर हो सकता है जिसने ईश्वर के समान होने के लिए पेड़ के फल की इच्छा की, बगीचे में सीधे दिव्य संप्रभु पर हमला किया। कहानी जल्द ही कैन द्वारा हाबिल की हत्या के साथ शुरू होती है, जो ईश्वर की स्वीकृति से ईर्ष्या के कारण हुई थी। ईर्ष्या लोभ या ईर्ष्या से भी अधिक गहराई से संबंधित है, जिसके साथ हम अंदर से हैं। दान के दोनों पहलुओं, ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम का उल्लंघन करते हैं। अब जैसा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए, नीतिवचन अन्य बुराइयों की तुलना में ईर्ष्या का कम स्पष्ट रूप से सामना करते हैं। जबकि नीतिवचन केवल व्यवहार को नहीं बल्कि चरित्र को भी संबोधित करते हैं, नीतिवचन के साहित्य के प्रकार में अधिकांश भाग के लिए ठोस छवियां शामिल होती हैं। ये ठोस छवियां मुख्य रूप से परिणामी सामाजिक प्रथाओं और भाषण जैसे सार्वजनिक अभिव्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि सीधे तौर पर आंतरिक स्वभाव पर। उनके बारे में नीतिवचन की तरह बोलना कठिन है। इस प्रकार नीतिवचन आमतौर पर जिस तरह की सलाह देते हैं उससे सीधे तौर पर ईर्ष्या का सामना करना मुश्किल है। फिर भी अध्याय 23 और 24 में नीतिवचन स्पष्ट रूप से कहता है, दुष्टों से ईर्ष्या मत करो और अमीरों से ईर्ष्या मत करो। इसके अलावा वासना, लोलुपता और लालच के संदर्भ में नीतिवचन में ईर्ष्या के कई कारणों का भी सामना किया जाता है। दुष्टों या अमीरों से ईर्ष्या न करने के कारण परिचित हैं। विडंबना यह है कि उनका सुखवाद गरीबी की ओर ले जाता है। वे सामाजिक व्यवस्था में अराजकता और संघर्ष लाते हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है, भले ही हम नहीं जानते कि भगवान उनसे कैसे निपटेंगे। नीतिवचन अमीरों की ईर्ष्या को सांस्कृतिक जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक 20 और 21 गरीबों को उनके पड़ोसी भी नापसंद करते हैं, लेकिन अमीरों के बहुत से दोस्त होते हैं। जो अपने पड़ोसियों को तुच्छ जानते हैं वे पापी हैं, परंतु जो कंगालों पर दया करते हैं वे धन्य हैं। नीतिवचन हमारे पड़ोसियों के प्रति समस्याग्रस्त दृष्टिकोण का भी सामना करते हैं, जो ईर्ष्या को प्रतिबिंबित और उत्पन्न कर सकते हैं। जो कोई दूसरे को तुच्छ जानता है उसे बुद्धि की हानि होती है, परंतु बुद्धिमान चुप रहता है। 11:12। दुष्टों के प्राण बुराई की अभिलाषा करते हैं। उनके पड़ोसियों की आंखों में कोई दया नहीं है। 21:10। जब तेरे शत्रु गिरें तब आनंदित न होना, और जब वे लड़खड़ाकर गिरें तब अपना मन आनंदित न करना, अन्यथा यहोवा यह देखेगा और अप्रसन्न होगा और अपना क्रोध उन पर से दूर कर देगा। 24:17-18 इत्यादि। ईर्ष्या की शक्ति अध्याय 27 और श्लोक 4 में स्पष्ट है। क्रोध भयंकर है और क्रोध बाढ़ है, लेकिन ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। और 14:30 में शरीर का जीवन एक स्वस्थ हृदय है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों की सड़न है, जैसा कि ट्रेम्पर लॉन्गमैन इसका अनुवाद करता है। जब ईश्वर या कोई विवाहित व्यक्ति अपने साथी की प्रेमपूर्ण निष्ठा के लिए उचित रूप से उत्साही हो तो ईर्ष्या का एक अनुबंध के भीतर सकारात्मक अर्थ हो सकता है। हालांकि यहां हम उस सड़ी हुई ईर्ष्या से निपट रहे हैं जो किसी के अंदर तब तक खा जाती है जब तक कि वह इस तरह से सामने नहीं आ जाती कि नुकसान फैलाती है। अंतः इसलिए अहंकार की पूंजी पतन से पहले चली जाती है। स्वयं के बारे में एक विकृत भावना, चाहे महिमा से फूली हुई हो या ईश्वर के प्रेम पर भरोसा करने में असमर्थता से फूली हुई हो, सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी इच्छाओं को विकारग्रस्त कर देती है, जैसे वासना, लोलुपता और लालच में, और अन्य लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को विकृत कर देती है, जैसे कि क्रोध और ईर्ष्या में। यदि अपमानित होने की विकृति, भगवान के प्यार पर भरोसा करने में असमर्थता, आलस्य कभी कभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो सकता है, जबकि ऐसा लगता है कि गर्व छिपाया जा सकता है, यह केवल एक सापेक्ष विरोधाभास है। अभिमान अंतः स्वयं प्रकट होगा और फिर हमारा सामना अहंकार से होता है। दोनों वैचारिक रूप से भिन्न हैं। अभिमान स्वयं को उन तरीकों से बढ़ावा देने के प्रयास से संबंधित है जिन्हें स्वयं अनुमोदित करता है। वैंग्लोरी का संबंध दूसरों को खुश करने के प्रयास से है। उत्कृष्टता एक वैध खोज हो सकती है जो किसी संस्कृति को पहचानने के लिए उपयुक्त हो। हालांकि हमारी समकालीन संस्कृति में और शायद कई अन्य में लोग उत्कृष्टता की तुलना में दूसरों की राय में अधिक रुचि रखते हैं, और यह निकट दृष्टि घमंड और गर्व को एक साथ लाती है। यह विडंबनापूर्ण है कि प्रामाणिकता और आत्मभिव्यक्ति की समकालीन लालसा दूसरों से पुष्टि की लालसा की आवश्यकता के साथ सहअस्तित्व में रह सकती है। सोशल मीडिया, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, या असामाजिक मीडिया जैसा कि वे वास्तव में हो सकते हैं, इस समय घमंड और घमंड के बीच इस ओवरलैप पर विशेष रूप से प्रतिबिंब की आवश्यकता है। वैंगलोरी में किसी अयोग्य चीज के लिए प्रशंसा की तलाश करना या किसी बेकार स्रोत से प्रशंसा की मांग करना शामिल हो सकता है, लेकिन भगवान या पड़ोसी की बजाय अपने लिए दूसरों से प्रशंसा की मांग करना भी शामिल हो सकता है। अभिमान में खुद को उपलब्धियों के कारण के रूप में देखना, खुद को इन उपलब्धियों के लायक मानना, भले ही वे भगवान से आए हों, उन गुणों का घमंड करना जिनमें वास्तव में कमी है, या उन लोगों का तिरस्कार करना जिनके पास उन चीजों की कमी है जो उनके पास हैं। वह सूची विशेष रूप से शिमेल से आ रही है। बाइबल के ज्ञान की विनम्रता का विशिष्ट उत्सव उचित मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता है। नीतिवचन मानते हैं कि ईश्वर का भय और पारंपरिक मार्गदर्शन स्वयं को एक ऐसे संदर्भ में रखता है जो निर्मित दुनिया और मानव समुदाय में आनंद लेना संभव बनाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है जिसकी विशिष्टता ईश्वर का सम्मान करने और दूसरों को आशीर्वाद देने के बजाय उभरती है। मौलिक रूप से स्वायत्त, यह देखते हुए कि हम वास्तव में अपने संबंधपरक संदर्भों से कितना आकार लेते हैं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं, विकल्प मानव व्यक्तित्व और पारंपरिक समुदायों के बीच नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक गठन के बीच है। विनम्रता में कीड़े की तरह बड़बड़ाना, व्यक्ति की गरिमा या व्यक्ति की विशिष्टता को नकारना शामिल नहीं है, बल्कि इसके बजाय अपने आप को जितना आपको सोचना चाहिए उससे अधिक ऊंचा सोचने से इनकार करना, न केवल अपनी विशेष कमजोरियों को बल्कि अपनी विशेष शक्तियों को भी पहचानना है। भगवान और दूसरों के संबंध में रोमियो 12:3। जब हम इस बात पर आते हैं कि नीतिवचन घमंड के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो हम तुरंत देखते हैं कि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। 15:25 उदाहरण के लिए, यहोवा अभिमानियों का घर तो ढा देता है, परंतु विधवा की सीमा बनाए रखता है। 16:05 जो लोग अभिमान करते हैं वे सब यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। आश्वस्त रहें कि वे दंडित हुए बिना नहीं रहेंगे। 16:18-19 प्रसिद्ध रूप से, विनाश से पहले अहंकार और पतन से पहले अहंकार होता है। घमंडियों के साथ लूट बांटने से कंगालों के बीच नम्र स्वभाव का होना उत्तम है। इसके विपरीत 22:04 नम्रता और प्रभु के भय का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। 26:12 में घमंड का खतरा स्पष्ट है। क्या आप व्यक्तियों को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान देखते हैं? उनसे अधिक मूर्खों से आशा है। हम कह सकते हैं कि मूर्खता के मूल में अहंकार है। फिर भी नीतिवचन सम्मान की तलाश के हर रूप को अस्वीकार नहीं करता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि अभिमान वास्तव में अपमान लाता है और विनम्रता इसके विपरीत। 11:2। जब अभिमान होता है तब अपमान होता है, परंतु बुद्धि नम्र लोगों में रहती है। एक स्वस्थ समुदाय विनम्र लोगों की बुद्धिमत्ता को पहचानता है और मूर्खों की उपेक्षा करता है। 26:1 जैसे गर्मी में बर्फ या फसल में बारिश, वैसे ही सम्मान मूर्ख के लिए उपयुक्त नहीं है। 22:01 बड़े धन से अच्छा नाम उत्तम है और सोने चांदी से अनुग्रह उत्तम है। दूसरों की हानि के लिए केवल स्वयं के लिए गर्वपूर्वक सम्मान का पीछा करना या दिव्य उपहार प्राप्त करने से इनकार करने के बीच अंतर है। इसमें और अनुबंध पालन करने वाले समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्वीकृति चाहने में अंतर है। वास्तव में ऑगस्टीन चेतावनी देते हैं कि अक्सर घमंड की अवमानना और भी अधिक घमंड का स्रोत बन जाती है, क्योंकि जब घमंड की अवमानना एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को गर्व होता है, तो इसका तिरस्कार नहीं किया जाता है। हम ऐसे दिखने की कोशिश कर सकते हैं जैसे कि हम विनम्र लोग हैं, उन अजीब नए एथलीटों की तरह जो कहते हैं कि कुछ सम्मान प्राप्त करके वे वास्तव में विनम्र हैं। वह मौखिक टिक हमारी संस्कृति में एक प्रकार की झूठी विनम्रता के बारे में काफी हद तक खुलासा करता है। इसलिए विभिन्न कहावतें संकेत करती हैं कि सामाजिक स्थिति चरित्र की परीक्षा है। 27:21 जैसे चांदी के लिए कुठाली है और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य की परख प्रशंसा के द्वारा होती है। प्यार में सच्चाई से निपटने के बजाय दूसरों पर एहसान जताने का प्रलोभन होता है। हालांकि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो कोई किसी व्यक्ति को डांटता है उसे बाद में जीभ से चापलूसी करने वाले की तुलना में अधिक एहसान मिलेगा। 28:23 एक स्वस्थ वाचा समुदाय में सामाजिक स्वीकृति ईश्वरीय कार्य के बाद हो सकती है, लेकिन गिरी हुई दुनिया में हमें अक्सर दूसरों की राय के गुलाम होने के बजाय ईश्वर से डरने के लिए पर्याप्त धैर्य की आवश्यकता होती है। आखिरकार दिखावे से धोखा हो सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा, कुछ लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, और अन्य लोग गरीब होने का दिखावा करते हैं फिर भी उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। जैसा कि ऑगस्टीन की टिप्पणी है, धन के संबंध में वास्तव में जिस चीज से डरना चाहिए वह है गर्व। वह एक फूली हुई वाइनस्किन की उपमा का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि किस तरह धन पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति भरा हुआ प्रतीत हो सकता है, जबकि वास्तव में वह एक खाली भिखारी है। और मूर्ख आत्मविश्वास दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान को अलग तरीके से पहचानना चाहिए। 12:15 मूर्ख अपने ही मार्ग को ठीक समझते हैं, परंतु बुद्धिमान सम्मति सुनते हैं। 13:10 असावधान लोग ढिठाई से झगड़ते हैं, परंतु बुद्धि उनमें होती है जो सम्मति लेते हैं। संक्षेप में, अभिमान के विपरीत के रूप में बाइबल की विनम्रता ईश्वर के प्रति आस्था के भय के माध्यम से परोपकार, वासना और अन्य पूंजीगत बुराइयों के विपरीत अच्छे चरित्र को बढ़ावा देती है। ऐसी विनम्रता वैयक्तिकता को नष्ट नहीं करती या हर प्रकार की सामाजिक स्थिति को नकारती नहीं है। वाचा समुदाय में नैतिक बदनामी से बचने की कोशिश करना एक वैध लक्ष्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचान हासिल करना स्वस्थ हो सकता है। घातक अभिमान तब शामिल हो जाता है जब लोग दूसरों के विरुद्ध या ईश्वरीय कृपा से अलग पहचान का प्रयास करते हैं, ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने में असफल होते हैं, केवल अपनी सेवा करते हैं। नीतिवचन शिक्षा शास्त्र में हम दैवीय और मानव परिवारों के बीच जो सादृश्य विकसित कर रहे हैं वह गर्व की नश्वरता को पुष्ट करता है। जो लोग सांसारिक मित्रों और माता पिता से सुधार स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे अहंकार पूर्वक परमेश्वर के अनुशासन को अस्वीकार करते हैं। भगवान से डरने के विपरीत अहंकार अंतःपतन से पहले होता है, लेकिन कभी कभी भगवान का डर गिरोह के खिलाफ साहसी व्यक्तित्व की मांग करेगा जो सच्ची विनम्रता का निहितार्थ है। वास्तव में लोग विश्वास के अलावा विवेक या अन्य प्रमुख गुणों के कुछ प्रारंभिक तत्वों को विकसित कर सकते हैं, लेकिन उस मामूली नैतिक प्रगति के लिए भी सही लोगों को सही तरीके से सुनने के लिए कुछ हद तक विनम्रता की आवश्यकता होगी। ईश्वर की कृपा से हम आशा कर सकते हैं कि यह विनम्रता उन लोगों को जो प्रारंभ में सद्गुण के मार्ग पर हैं, उनकी गहरी आध्यात्मिक आवश्यकता की ओर निर्देशित करेगी, अंततः उन्हें सच्चे समग्र की शुरुआत के रूप में प्रभु के भय से जोड़कर उनमें धार्मिक गुणों का विकास करेगी। एकीकृत ज्ञान। यह डॉक्टर डैनियल जे ट्रेयर ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र संख्या 3 है, नीतिवचन 10-29, कैपिटल वाइस।